मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 20 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में 2 दिनों के बाद मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बीच के ये 2 दिन आपके बड़े खूबसूरत तरीके से बीते होंगे। भागा भागी, भागम भाग, भाग दौड़, धक्का मुक्की, इन सब से कुछ तो निजात आप सबको मिली ही होगी, और यदि नहीं मिली हो तो कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम इन 2 दिनों में 1 दिन तो हम अपने आप को थोड़ा सा खाली रख सकें, थोड़ा सा इत्मीनान प्रोवाइड कर सकें, अपने दिमाग और शरीर दोनों को शांतिपूर्ण स्थिति में लेकर आए। और सच पूछे तो छुट्टियों का यही सबसे बड़ा महत्व भी है। खैर फ्रेंड्स, तो आइए आज के लाइफ मैनेजमेंट के विषय पर सबसे पहले बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों से एक वायदा किया था, और वो यह कि खासकर इस बार हमारे जो 7th बैच के जो स्टूडेंट थे उनको मेरा कुछ जो फेयरवेल एड्रेस था, जिसे आप विदाई उद्बोधन कह लीजिए, वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। ये उनका अपना बड़प्पन है कि उन्होंने इस बात से मुझे अवगत कराया है, और मैंने फिर आपसे कहा था कि उसके कुछ बिंदुओं को लेकर मैं विस्तार से बातें करूंगा। मैं सबसे पहले तो अपने 7th बैच के उन स्टूडेंट्स के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत डिटेल में पॉइंट्स वाइज मुझे अवगत कराया है कि मैंने किन किन बिंदुओं पर बातें की थी, वो मैंने नोट कर लिए हैं, और उन्हीं में से अब कुछ बिंदुओं पर मैं बातें करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि अब मैं कंटिन्यूएशन में उन्हीं बिंदुओं को लेकर नहीं चलूंगा। आज मैं जरूर वहां से एक विषय उठा रहा हूं, और अब बीच बीच में मैं विषय उठाया करूंगा, क्योंकि दरअसल होता यह है कि इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कुछ अच्छे थॉट्स भी दिमाग में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, सबसे पहले तो इनसे निपट लेना चाहिए, अदरवाइज ये बाद में बासी पड़ जाएंगे या मैं भूल ही जाऊंगा। तो ऐसे समय में अगर बहुत पहले से कोई सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया हो, जैसा कि अभी फेयरवेल वाले टॉपिक को हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, तो बाधक बन जाते हैं। वो सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं, बीच बीच में अब हम उन्हें रखेंगे। फिलहाल मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो फेयरवेल एड्रेस का ही एक वाक्य है, और उस वाक्य की व्याख्या मैं थोड़ी सी आप लोगों के सामने आज करना चाहूंगा। मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बात मैंने कही थी कि ईश्वर हमारा पिता होता है और हम सब ये मानते हैं, और बड़ी बात यह है कि ये केवल भारतीय दर्शन में ही नहीं है। दर्शन की जगह आप धर्म शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि दोनों एक नहीं होते, दोनों में बहुत फर्क होता है, लेकिन मैं सामान्य तौर पर समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं। क्रिश्चियनिटी में भी है, अल्लाह की जब बात करते हैं तो वो तो पिता है ही, मतलब ज्यादातर आप दर्शन में, धर्म में आप देखेंगे कि ईश्वर को पिता माना गया है, क्रिएटर माना गया है, हमारा सर्वस्व माना गया है। मित्रों, हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमारे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो मैं खुद अपने लिए भी महसूस करता हूं, वो ये है कि हम कहीं ना कहीं शब्द जीवी बन गए हैं, भाषा जीवी बन गए हैं। शब्द जीवी और भाषा जीवी कहने का मतलब है कि हम शब्दों में विश्वास करते हैं, भाषा में विश्वास करते हैं, यूं कह लीजिए कि शब्दों के अर्थ में भी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ को जीने में विश्वास नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और सच पूछे तो सबसे बड़ा विश्वासघात भी है। विश्वासघात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस चीज पर मैं विश्वास कर रहा हूं, अगर मैं उसे अपने एक्शन में नहीं लाता हूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह विश्वासघात ही है? तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने ही साथ विश्वासघात कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर हमारा पिता है, तो क्या सच में ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो एक पिता पुत्र जैसा है? ईश्वर हमारे साथ क्या कैसा संबंध रखता है, चलिए हम नहीं जानते, क्योंकि हम उनसे पूछ नहीं सकते, बताने वाला कोई नहीं है। हम एक बिलीफ कर सकते हैं, एक विश्वास कर सकते हैं, अगर हम विश्वास करना चाहते हैं तो कर लें, और न करना चाहते हैं तो न करें, उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इसका जवाब तो हम सबके पास है कि हम उसे पिता मानते हैं या नहीं मानते हैं, और अगर मानते हैं तो कितना मानते हैं, सच में मानते हैं या केवल कहने के लिए मानते हैं, जैसे कि जुमले उछाल दिए जाते हैं और हम भी एक जुमला उछाल दिया जाता है, हम भी उछाल देते हैं कि तू मेरा पिता है, तू ही अब मुझे देख, मैं तेरी शरण में हूं, या कि हम सच में शरण में जाते हैं। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि होता यह है कि जब हम विश्वास करते हैं, या उसे और गहरा शब्द देना चाहें तो हमारी आस्था टिकती है, उस पर हम बहुत गहरे रूप में अपने श्रद्धा भाव का संचार कर देते हैं और वो हमारे एक्शन में नहीं आ पाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिसे मैंने कहा कि हम अर्थों को बोलते हैं, अर्थों की दुहाई देते हैं, लेकिन अर्थों को जीते नहीं है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है जीना, भले हम उसकी दुहाई ना दें। दुहाई हम देते शायद इसलिए हैं, या देते ही रहते हैं, देते रहना पसंद करते हैं, ताकि हम भूल ना जाएं। हम अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि नहीं, ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा पिता है, हमें ये कहीं विस्मृति ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम याद भी रख रहे हैं तो किस लिए रख रहे हैं, अगर वो हमारे चरित्र में उतर नहीं पा रहा है तो। अब आप देखें मित्रों कि हम कैसे अपने साथ ही विश्वासघात करते हैं, इसे थोड़ी सी संवेदनशीलता के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सबके अपने अपने पिता हैं, मैं भौतिक जगत के पिता की बात कर रहा हूं, अपने फादर की ही बात कर रहे हैं। हम सब अपने माता पिता को जानते हैं, राइट? पिता हमारे प्रति क्या भावनाएं रखते हैं यह भी हम जानते हैं, और उनकी भावनाओं के बदले में हम उनके प्रति कैसी भावनाएं रखते हैं हम यह भी जानते हैं। देखिए, मैं उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं जब हम थोड़े से समझदार हो जाते हैं और एक पीढ़ियों का गैप आ जाता है और पेरेंट्स और बच्चों में कुछ विचारों की खाइयां पैदा हो जाती हैं, विचारों के टकराव पैदा हो जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, विचारों का टकराव होना कोई मनभेद नहीं है, वो तो मात्र मतभेद है, होने दीजिए, अच्छी बात है। वो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, अच्छी बात है, दोनों आपस में बहस कर रहे हैं और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये कोई डाउट करना भी नहीं है। इस बात मत कीजिए, सोचिए कि हम संदेह कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। यहां मैं जिस विश्वास की बात कर रहा हूं, जिस संदेह की बात कर रहा हूं, या जो जिस रूप में मैं कह रहा हूं कि ईश्वर हमारा पिता होता है, वो ये, केवल ये कि जो पिता होगा, जो मां होगी, कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं चाहेगी, बुरा नहीं चाहेगी। देखिए, हमारे जो मतभेद होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने तरह से, हमारे जो माता पिता है वो अपने ढंग से सोचते हैं कि मेरे बच्चे का हित इसमें है, और बच्चा अपने ढंग से सोचता है कि नहीं, मेरा हित उसमें नहीं, इसमें है। टकराव का मूल कारण बस इतना ही है, दोनों जो सोच रहे हैं वो हित के बारे में ही सोच रहे हैं, हित के साधन क्या हो सकते हैं, उसके तरीके क्या हो सकते हैं, फर्क केवल इसमें है। लेकिन सोच माता और पिता अपने बच्चे के हित के बारे में ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट मुझे लगता है कि होना चाहिए, राइट? आप देखिए कि होता क्या है कि अगर वो अपने बच्चे के हित के बारे में सोच रहे हैं, जो कि वो सोचते ही हैं, तो सीधी सी बात है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। और भारतीय माता पिता के बारे में तो हम सबका अपना अपना अनुभव है, और हम सब जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी की कितनी सारी इच्छाओं की कटौतियां कर करके अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं, करते हैं, अपनी कटौतियां करते हैं, अपने समय की कटौतियां करते हैं, इच्छाओं की कटौतियां करते हैं, खर्चे की कटौतियां करते हैं, जीवन पद्धति की कटौतियां करते हैं, और सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। ये बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, ये हमारे माता पिता करते हैं, और अब हमने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है। अब आप इसको थोड़ा सा ईश्वर पर अप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब है कि ईश्वर भी हर संभव ये कोशिश करता है कि मेरे जो बच्चे हैं इनकी इच्छाएं पूरी हों, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है, इच्छाएं पूरी हों। अगर मैं मान रहा हूं कि ईश्वर मेरा पिता है तो मुझे यह भी मानना पड़ेगा कि वह मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर उठा नहीं रखेगा, राइट? अब सेकेंड स्टेज में हम आते हैं, तो फिर इच्छाएं पूरी होती क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? फिर हम ये जोड़ देते हैं कि ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है। मित्रों, यहां हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे हमारे अपने पिता के करने की एक सीमा है, एक मर्यादा है, ठीक इसी तरह से ईश्वर के भी करने की अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है। हमें यह कभी नहीं मान करके चलना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है। डेफिनेटली वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसी के साथ ही ईश्वर के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है कि वो बहुत न्यायप्रिय है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि उसे अपने बच्चों के बीच में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था भी बनाकर रखनी है। यानी कि अगर वो सबको बराबर बराबर देने लगेगा तो आप मान करके चलिए कि समाज में, संसार में एक बहुत विचित्र किस्म के अन्यायपूर्ण स्थिति का निर्माण हो जाएगा। बाइबल में इसीलिए एक बड़ा खूबसूरत वाक्य आया है फ्रेंड्स, और वो यह आया है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है उससे वापस ले लिया जाएगा। अब आपको एक बड़ी विचित्र किस्म की विरोधाभासी उक्ति दिखाई देगी, जिसके पास है उसे क्यों दिया जाएगा, उसको तो जरूरत ही नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसको देना चाहिए क्योंकि उसके पास नहीं है, उसको उसकी जरूरत है, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि उसके पास से ले लिया जाएगा। इसको थोड़ा सा आप जस्टिस की लैंग्वेज में सोच करके देखिए। जिसके पास है इसका मतलब है कि उसने अपनी योग्यता प्रमाणित की है, तभी तो उसके पास है। तो जिसके पास है उसके पास योग्यता है, और वह अपनी योग्यता से और हासिल करता जाएगा, देने की कहां जरूरत है, उसके पास तो और आता ही चले जाएगा। और जिसके पास नहीं है, डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई कमी तो है, उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो है, चाहे वो आलसी हो, चाहे वो दुर्गुणी हो, जो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो कमी है। तो जो कुछ भी पास में है वह भी धीरे धीरे अपने आप खत्म होता चला जाएगा। इसके लिए बाहर से किसी शक्ति की जरूरत नहीं है कि कोई आ करके कुछ गठरी बांध करके दे जाएगा, या कोई घुस करके रात में उससे गठरी में बांध करके उसके यहां से ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। दिया जाएगा का मतलब है कि प्रकृति उसे और देगी, ईश्वर उसे और देगा, यह ऑटोमेटिक होगा। तो यह न्यायपूर्ण स्थिति होती है, और ईश्वर अपने पिता की भूमिका को निभाने के साथ साथ जब एक न्यायाधीश की भूमिका में होता है तब डेफिनेटली यही स्थिति आती है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम अपने ईश्वर को अपना पिता मानते हैं, तो जिस तरह से हम अपने पिता की भावनाओं का सम्मान करते हैं, माता पिता की भावनाओं का सम्मान करते हैं, माता पिता की इच्छा को रखने के लिए हम ढेर सारे अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, अपने को ढेर कई पता नहीं किन किन रूपों में ढालते हैं, हमें चाहिए कि ईश्वर को सम्मान देने के लिए, ईश्वर की भावनाओं को सम्मान देने के लिए हम भी अपनी व्यवस्थाएं करें और अपने को अलग अलग सांचे में ढालें, ताकि हमारा पिता प्रसन्न हो सके। और पिता को प्रसन्न करने का केवल एक ही तरीका जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि पिता उस दिन प्रसन्न होते हैं जिस दिन उसे यह सूचना मिलती है, या बिना सूचना मिले ही वो समझ लेता है कि उसके बच्चे प्रसन्न हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।